आज भी देवी काली के समक्ष
पशुतुल्य मनुष्यों के बलि चढ़ाई जाती है, तो भी ऐसी बलि केवल शूद्रों तथा ढाकों द्वारा चढ़ाई जाती है। उनका कार्य धनी व्यक्तियों को लूटना है और उनमें सफल होने के लिए वे देवी काली के समक्ष नर पशु की बलि देते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि वे देवी पर कभी भी किसी बुद्धिमान मनुष्य की बलि नहीं देते। ब्राह्मण शरीर में भरत महाराज गूंगे तथा बहरे प्रतीत हो रहे थे, किंतु तो भी वे संसार के सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे। इतने पर भी श्री भगवान के प्रति सर्वथा समर्पित होने के कारण वे उसी स्थिति में रहते थे, रहते आए और वध के लिए लाए जाने पर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। जैसे कि पिछले श्लोकों में हमें ज्ञात है, वे इतने बलि थे कि चाहे तो रस्सियों से बंधे जाने से अपने को बचा लेते, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे अपनी सिद्धि के लिए श्री भगवान पर पूरी तरह आश्रित थे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर परमेश्वर के प्रति समर्पण का वर्णन इस प्रकार कहते करते हैं। मारो भी राखो भी यो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। हे ईश्वर, मैंने आपको आत्मसमर्पण कर दिया है, मैं आपका शरणागत सेवक हूँ और यदि आप चाहें तो मुझे मारें या मेरी रक्षा करें, प्रत्येक दशा में मुझ पर आपका अधिकार है।
ओम ज्ञान ज्ञानस्य ज्ञानानन्दं स्वाहाय चक्षुरोन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनो विष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं ददाति सर्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्धजातं सहगणगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिताश्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि त्रिपुरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जयताम सर्वतोभवतु मा वन्दते गतिमत् सर्वस्वदाम्बुजो राधामदनमो। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रवरुणस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैस्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्त्यं सर्वदा ध्यानावस्थितदुद्गतेर्मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै। तेरहवा श्लोक में तात्पर्य नहीं होने के कारण हमने चौदहवा श्लोक पढ़ा, तो तेरहवा श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है।
डाकों के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु पकड़ा, किंतु वह बचकर निकल भागा। तो सरदार के अपने सेवकों को ढूंढने के लिए आज्ञा दी। अर्धरात्रि के गहन अंधकार में इधर उधर ढूंढते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचे, जहां उन्हें अंगीरा वंश के एक ब्राह्मण कुमार जड़भरत को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर मृग तथा जंगली सुरों के खेत की रखवाली कर रहा था। जैसे कि हम जानते हैं कि जड़भरत का चरित्र का वर्णन चल रहा है। जड़भरत के पिताजी के दो पत्नियां थी, और पहले पत्नी के द्वारा उनको 9 पुत्र हुए थे, और दूसरे पत्नी के द्वारा जुड़वे हुए थे जड़भरत और साथ में उनकी एक बहन। तो जैसे जन्म देने के बाद ये 9 पुत्र ब्राह्मण के कार्यकलापों में बहुत प्रविष्ट, बहुत एक्सपर्ट हो गए, निपुण हो गए, चारों वेदों को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किए हैं। लेकिन जड़भरत अपने पिताजी चाहते थे उनको मैं ब्राह्मण की कार्यकलाप सिखाऊंगा, मैं उनको गायत्री मंत्र सिखाऊंगा, मैं कर्मकांड के सादी विधि सिखाऊंगा, मैं उनको एजुकेटेड बनाऊं, मैं उनको पढ़ा लिखा व्यक्ति बनाऊं। कितना भी प्रयास कर रहे, लेकिन जड़भरत जरा सा भी रुचि नहीं दिखाया उन्हें। और उनकी माँ वो पितृलोक चली गई, उनके मियारी उनका शरीर त्याग करके चली गई, अपने दो एक बच्चों को जड़भरत और उनकी पुत्री को अपनी जो बड़ी बहन के तुल्य है, और एक उनकी माँ को सौंप के चली गई। तब उनके जितने भी भाई थे, ये जड़भरत को सोचते थे ये मूर्ख है, एक नालायक है, उसको क्या किए, उनसे पूरा फायदा लेना शुरू कर दिया। उनको ऐसे खेत को रखवाली करने के लिए ऐसे कार्य जो कोई करना नहीं चाहता, खेत में जाके रात भर बैठे रहो और कोई जानवरों से बचा के रखो, खेत का वॉचमैन कौन करता है? आप गांव में भी जाके देखो, कोई रात को खेत में कोई नहीं बैठता है, कोई मिलता नहीं ऐसा। असल में रात को बहुत सारे जानवर आके खेत को नष्ट कर देते, लेकिन फिर भी रात को खेतों में किसी को वॉचमैन के रूप में किसी को बैठाते नहीं, अगर बैठा भी दिया कोई ज्यादा दिन रुकता नहीं है। तो ऐसा कार्य जो कोई करना नहीं चाहता है, कर मिलता नहीं है ऐसा, उस प्रकार के कार्य में उनको डाल दिए जड़भरत। तो खेत में रात भर बैठे रहते थे और जो भी जानवर आते थे उनको भगा देते, उनका कार्य था जड़भरत का। और उनको वापस खाने के लिए क्या देते थे? उनको सड़ा हुआ चावल, टूटा हुआ जो धान है वो सब देते थे, और जड़भरत उनको स्वीकार करते हुए सोचते थे कि वाह ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, अमृत के समान उसको स्वीकार कर देते। तो ये जड़भरत का कहानी अभी चल रहा है। अभी एक दिन ऐसा हुआ, काली के जो उपासक है, जो बंगाल में अधिकांश पाए जाते हैं, बंगाल में ये प्रथा है काली पूजा का प्रथा। और काली पूजा कौन करते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि निम्न स्तर के लोग, शूद्र और डाकू लोग करते हैं। डाकू लोग हमेशा लूटना चाहते थे किसी को, किसी और धन को, तो उसके लिए उनको शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहाँ से मिलेगा? काली से मिलेगा। तो ये काली का पूजा बंगाल में बहुत प्रचलित है। दुर्गा का दो स्वरूप होता है, एक है कारुण्य स्वरूप, जैसे माँ का स्वरूप जैसा रहता है, माँ का भी दो स्वरूप होता है। कभी कभी वो एकदम भयानक सा स्वरूप धारण करती है माँ, और दूसरी प्रकार बच्चे को देखभाल करने के लिए माँ का वात्सल्य स्वरूप दिखाई दे। ये उग्र रूप का जो काली का रूप है, मुक्ष वो उग्र रूपान हित्वा बुद्धमती रतः। तो भागवत में वर्णन है कि ये काली का जो उग्र रूप है, उग्र रूप के उपासक कौन है? एकदम निम्न स्तर के लोग है, वो उग्र रूप का उपासक करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा उनको शक्ति मिलता है ताकि लोगों को लूट सके। तो इधर ऐसा ही एक डाकू था, उनको एक पुत्र चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने अनुचरों को बोला आप जाओ जाके मुझे एक पशु मनुष्य ऐसा व्यक्ति को लेके आओ जो पशु के बराबर हो। तो लो लेके आए ऐसे एक मूट व्यक्ति को लेके आए, एकदम पूरा निम्न स्तर के जाति का व्यक्ति को लेके आए, जो एकदम जिनका कोई बुद्धि है ही नहीं, जानवर के बराबर है, बस खाली दो पैर है उनके पास, मनुष्य जैसा दिखता है लेकिन ऐसे में सारा जानवर के लक्षण उनके पास है। जैसे उनको पकड़ के लेके आए तो कैसे भी भाग बस वो भाग गया, लेकिन सब तैयारी हो चुका है यज्ञ का, उनको सैक्रिफाइस करने का, लेकिन फिर क्या करे, और एक व्यक्ति को चाहिए। तब उनके जो प्रमुख है उन्होंने आज्ञा दिया आप जाओ और एक व्यक्ति को पकड़ के लाओ। वो ढूंढ ढूंढ ढूंढते ढूंढते धान की खेत में जब पहुंचे, उधर जड़ बनाते ऊंचे आसन में बैठे, बैठ के किसके लिए बैठे है, जो भी रास्ते में जो जानवर आते हैं उधर उनको और जो सुअर है उनसे बचाने के लिए खेत को उधर बैठे। तो जैसे ये लोगों ने देखा जड़ भरत को इधर बैठे हुए, तो देखे उनके इतने सारे जो लक्षण है वो किसके लक्षण दिखाई पड़ रहे थे, एक पशु के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। तो जड़ भरत असलियत में पशु नहीं है, लेकिन ये लोग कैसे दिख, ये लोग इनको जब देखे इनको क्या दिखाई पड़े, पशु दिखाई पड़ा। तो एक मूर्ख व्यक्ति को उनके सामने अगर एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को, पूरा जो आत्म साक्षात्कार तो प्राप्त कर चुके मुक्त व्यक्ति को सामने रखा जाए, एक मूर्ख को मुक्त व्यक्ति जो है मूर्ख दिखाई पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अधिकांश लोग जैसे भौतिकवादी हरे कृष्ण वालों को क्या बोलते हैं, आप पागल हो, और हम क्या बोलते हैं, वो पागल है। लेकिन असल में पागल कौन है? तो वैसे इधर भी जड़ भरत को देख के ये लोग क्या सोच रहे हैं, हाँ ये पशु है, ये पशु के बराबर है। और जड़ भरत भी उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था, ये भी जानवर है, ये भी पशु है। असल में कौन क्या है मालूम नहीं पड़ता है, बहिरंगिक दृष्टिकोण से कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। असल में देखा जाए ये सही बात है, एक जो तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुण में एकदम निम्न स्तर का तमोगुण में जानवर जैसा अपना जीवन जीवन यापन करता है। जैसे बोला जाए हम लोग बोलते गधा, अगर कोई मूर्ख है वो क्या बोलते, गधा बोलते। नहीं तो अगर गधे से भी गया गुजरा अगर कुछ शब्द है तो उनको बोलते भैंस, कम से कम गधा कुछ तो काम करता है, बफेलो। तो ये जो एक भैंस का जो प्रवृत्ति है और एक मुक्त पुरुष का प्रवृत्ति है, बहिरंगिक दृष्टिकोण से देखा जाए दोनों एक ही जैसा लगता है। तो देखो भगवान क्या बताते हैं, मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है, कि मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे आगमापायनो अनित्यास्तां तितिक्षस वार्ता, चाहे गर्मी हो ठंडी हो उससे कुछ भी प्रभावित नहीं होना, अपना कर्तव्य करते जाना। वही तो अभी आप देखिए भैंस, चाहे गर्मी है ठंडी है एकदम उनका मुंह देखो एकदम शांत रहता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं उसके मुंह में, कोई चिल्लाता नहीं बहुत गर्मी हो रहा है मुझे ये चाहिए पंखा चाहिए, कुछ नहीं बोलता है। ठंडी है बारिश है एकदम शांत बैठा है, है कि नहीं? मुक्त पुरुष का लक्षण है कि नहीं उसके अंदर, है? शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अब आप गधे के सामने भैंस के सामने जाके बोलो उनका अपमान करो एकदम आराम से देखे उसका अपमान, वो कुछ बोलना नहीं, नहीं तुम मुझे ऐसा इंसल्ट क्यों किया, नहीं बोले। मुक्त पुरुष भी ऐसे ही, वो मुक्त पुरुष के सामने आप जाके उनको निंदा करो हंसेंगे, ये तो बस भगवान की कृपा है। जो भी सोचे लेकिन एक्सटर्नल बिहेवियर बहिरंगी जो कार्यकलाप है वो दोनों का एक ही है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है अलग बात है। लेकिन अंदर जो है व्यक्तित्व, अंदर का जो व्यक्तित्व बाहर कैसे प्रकट होता है, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं उनकी का तात्पर्य में, कि ए मैन इज नोन बाय हिज स्पीच, व्हेन ही स्पीक्स तब मालूम पड़ता है कि अस्तित्व में ये है कौन, तब तक मालूम नहीं पड़ता है ये कौन है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अस्तित्व में ये व्यक्ति कौन है, इसके अंदर क्या गुण है, क्या लक्षण है, हमको तब तक नहीं पता लगता तब तक वो बोलता नहीं। अभी आप एक जड़ भरत को रखिए और साथ में एक भैंस को रखिए, बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए वो दोनों एक ही जैसे, ये भी बलवान है ये भी बलवान है, और भैंस भी इसी दोष संतुति के शु मान अपमान है वो उसपे भी, इसके अंदर भी है समदृष्टता है, और हर प्रकार की भौतिक स्थिति के अंदर समान दृष्टिकोण बना के रखना, विचलित नहीं होना, ये दोनों गुण है। लेकिन आप भैंस को बोलो जरा आप दो शब्द बोलिए तो भैंस क्या बोलेगा, बैल। लेकिन जब मौका आया जड़ भरत को बोलने का राजा रघुवर के सामने, तब वो बोलना शुरू किया कि इतना बड़ा राजा होने के बाद रघुवर ने जस्ट उनका बात सुनते प्रणाम किया। तो मैन शुड बी आइडेंटिफाइड बाय स्पीच, उनका जो बात करना है या उनकी वाणी से व्यक्ति का पहचान होता है, उनका शरीर के लक्षणों से या उनके बहिरंगी कुछ कार्यकलापों से एक व्यक्ति का पहचान वास्तविक पहचान नहीं होता। व्यक्तित्व का पहचान जो है उनकी वाणी से होता है। जैसे एक श्लोक है ये भर्तृहरि सुभाषतानी का, उन्होंने अलग अलग लोगों का पद्धति लिखा है। अगर आप मुक्त पुरुष का क्या पद्धति होता है, मूर्ख का क्या होता है, विद्वान का क्या लक्षण होता है, तो वैसे ही मूर्ख पद्धति उसका वर्णन करते हुए एक श्लोक लिखते हैं भर्तृहरि सुभाषतानी। ये हमारे 11th स्टैंडर्ड के संस्कृत टेक्स्ट बुक में था। इसका पहला श्लोक है स्वायत्तम एकांत हितम विदात्रा विनिर्मितम चादरम अज्ञताया विशेषित सर्वविधाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। इसके अनुसार स्वायत्तम एकांत हितम विदात्रा विनिर्मितम चादरम अज्ञताया, यह व्यक्ति का जो अज्ञान है वो ढक देता है। क्या ढक देता है? मौन। अगर आप मौन रखोगे, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति बैठा है इधर पंडितों की समाज में बैठा है एक मूर्ख व्यक्ति, अगर वो चुपचाप बैठा है बाकी सब पंडित लोग बड़ा बड़ा बात कह रहे हैं, लेकिन ये चुपचाप बैठा है तो बाकी सब पंडित लोग सोचते होंगे अरे तो बहुत विद्वान लगता है, क्यों? वो बोल नहीं रहा है, यानी वो हमको देख रहा है, ये देख रहा है कि हम कोई गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एक मूर्ख व्यक्ति का जो अज्ञान है वो मौन जो है वो ढक देता है। मौनम अपंडितानाम विभूषणम मौनम अपंडितानाम, ये जो है ये मौन एक आभूषण के बराबर है मूर्ख व्यक्ति का। अगर कोई मौनी है ये समझ लीजिए, अगर वो मूर्ख भी है वो ये मौन ये आभूषण के बराबर है। जैसे वो आभूषण निकालेंगे मौन निकालेंगे यानी बात करना शुरू करेगा तो अस्तित्व मालूम पड़ता है। जैसे एक एकदम बदसूरत स्त्री है उसके ऊपर बहुत सारा गहने वहने सब डाल के मेकअप डाल के आओ तो ऐसा लगता है कितना सुंदर है, लेकिन असलियत क्या है वो सब निकाले तो पता लगता है कौन है। तो ये व्यक्ति का असलियत तभी मालूम पड़ता है जब बोलना शुरू करता है। When he starts speaking, then we can understand what he is. तो अभी ये कार्यकलाप हम सुनेंगे जड़ भरत का, ऐसा लगता है कि इनमें और जानवर में अंतर क्या है। जैसे ये डकैत के जो अनुचर है वो भी सोचने लगे कि ये जड़ भरत जो है ये भी पक्का आदमी पक्का जानवर के बराबर है, अभी ऐसे व्यक्ति चाहे, क्योंकि तात्पर्य में लिखा जाता है इन लोगों की दुर्गा के इनको अनुवाद इनको मालूम है कि एक मूर्ख व्यक्ति को ही बलिदान दिया जाता है, एक ब्राह्मण को एक विद्वान व्यक्ति को बलिदान नहीं दे सकते, काली को देंगे तो काली नाराज हो जाएगी। एक जैसे जानवर के समतुल्य व्यक्ति को ही बलिदान दिया जाता है ताकि उनको इस प्रकार का शक्ति आ जाए। तो इधर जड़ भरत को वो लोग सोचने लगे, क्योंकि वो लोग क्या है व्यक्ति को बहिरंग दृष्टिकोण से देखने लगे। इसलिए शास्त्र कहता है एक व्यक्ति को खास करके वैष्णव को हमको बहिरंग दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। वन शुड नॉट सी ए वैष्णव फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। वैष्णवेर जाति बुद्धि, ये जो है ये इस जाति का है, वो उस जाति का, ये शूद्र है, ये जानवर जैसा, इस प्रकार देखना नहीं चाहिए। और उसी बात को उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी पद बताते हैं कि न प्राकृत्वम यह भक्त जनस्य पश्ये गंगाम वसम खत न खलु गुटबुड फेण पंकैर ब्रह्मदोत्तम अवगच्छति नीलधर्मिणी। बोलते हैं कि प्राकृत्वम यह भक्त जनस्य पश्ये, भक्तों को अपनी जो बहिरंगी कार्यकलाप है या बहिरंगी फीचर से, अरे ये मोटा है ये पतला है ये काला है, तो इस प्रकार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये तो शरीर का लक्षण है, ये प्रकृति का लक्षण है। लेकिन ये बद्ध अवस्था में हर व्यक्ति केवल ये प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा मोहित होकर केवल तीन गुणों को ही देखता है, तो इसलिए लोग मोहित हो जाते हैं। जैसे ये लोग मोहित हो गए ये जड़ भरत को देखे, जड़वंते मोहित होने की वजह से क्या हुआ, जड़वर तो लेके गए, आगे आता है वर्णन किस प्रकार काली बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि अरे तो इतना विद्वान को लेके, ब्राह्मण को लेके, वैष्णव लेके आ मुझे वध करने के लिए मेरे सामने, मैं तुम्हारा वध कर दूंगी, अगर ये काली गुस्सा हो गई और इन लोगों को वध का कारण होगी। तो इन लोगों का पतन का कारण क्या हुआ, ये डाकू के जो अनुयायी है ये शूद्रों का, ये डकैतों का, ये डकैतों का पतन का कारण यही हुआ कि वो लोग एक भक्त को, एक वैष्णव को, एक मुक्त पुरुष को बहिर्मुख दृष्टिकोण से देखे। तो इससे हमको यही शिक्षा मिलता है कि हम अगर भक्तों को, भक्तों भक्त मतलब कौन है, लिबरेशन मुक्ति के पद में है, तो उनको भी अगर बहिर्मुख कार्यकलापों से देखा जाए तो क्या होगा, हमारे पतन का कारण वही काली आएगी, वही काली आके हमको मत कर दे। काली मतलब क्या है, कलयुग है, काली मीन्स कलयुग, जो कलयुग को प्रोत्साहन देती है उनको काली बोला जाता है, चीज काली। तो ये कलयुग के लक्षण क्या है, सबको देखो ये इनका ये दोष है, इनका ये दोष है, क्योंकि अगर प्रकृति में देखेंगे तो प्रकृति में दोष है ही। कुछ लोगों से पहले चैतन्य चरितमृत एक श्लोक कोट किया गया था, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो देखा गया कि द्वैत भद्र 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 जानी सब मनोधर्म, ये जो आप सोच रहे हो कि संसार में वो ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब केवल मनोधर्म है, इसको बोलते हैं द्वैता। द्वैता मतलब ये सही है ये गलत है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये बहुत सुंदर है ये सुंदर नहीं है, तो ये सब चीजें क्या है, ये मनोधर्म मात्र है। आप एक सुंदर सा रसगुल्ला रखो और एक सुंदर सा एक कटोरी में मल रखो, एक मुक्त पुरुष क्या देता है, ये रसगुल्ला और ये दोनों असत में तीन गुणों का मिश्रण है, इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, दोनों खराब है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये सुंदर है ये खराब है, असत में अभी भी उसका भ्रांति है, क्या भ्रांति है, उनका मनोधर्म। इस संसार में कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, असत में सब कचरा ही है, क्योंकि तीन गुणों से बना हुआ, ये मुक्त पुरुष देखने का लक्षण। तो अगर कोई व्यक्ति ये बात को नहीं जानते हुए वो सोचता है कि ये जो शरीर है ये अच्छा वैष्णव है ये खराब वैष्णव, नहीं नहीं ये जो है बहुत सुंदर वैष्णव है, ये ऐसा ना प्राकृतम भक्त जन से पश्य, ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ दोषों से युक्त देखता है कोई व्यक्ति तो क्या होगा, उसका पतन निश्चित रूप में होगा। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति गंगा के तट में जाता है और देखता है आज गंगा में नहीं नहाया क्योंकि गंदा है पानी, गंगा का पानी कब गंदा होता है, गंदा में लगा, गंगा तो पवित्र है, अरे भगवान का चरण कमलों से निकला है तो एक गंदा हो गया, ये तो सारे तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा है, क्या बारिश का पानी गिरने से थोड़ा सा मिट्टी मिलने से गंगा पवित्र हो जाता है, बुटबुड़ा फेड़ बन के, यानी बारिश के मौसम में कभी गंगा के जल में बुटबुड़ा आता है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप जो डेडी किचन में जाते हैं तो आप जब पानी वो चरणामृत या भरने के लिए आप कोई और आचमन पाठ में भरते हो, उसको भरने का तरीका है, आप डायरेक्टली ऐसे पानी डाल देंगे तो क्या होगा, बुटबुड़ा आता है, जैसे बुड़बुड़ आया समझ लीजिए वो पानी जो गंदा है अपवित्र हो गया, ऐसा मान लो। कोई भी पानी में अगर बुड़बुड़ आता है वो बुड़बुड़ वाला पानी को अशुद्ध माना जाता है, लेकिन वो बुड़बुड़ वाला पानी पीते हैं आजकल सब लोग, वो सोडा वो सेवन अप वो क्या क्या कुछ तो क्या क्या सब बुड़बुड़ वाला पानी है, जो रोगी है उसी को पीना चाहिए क्योंकि उसके हृदय उनका जो पेट बराबर काम नहीं करता है तब वो लोग पीते हैं, लेकिन आजकल सब लोग पीते हैं उससे मन और सब शरीर सब प्रदूषित होता है, तो इसलिए वो तब बाद में वो जल शुद्धि किया जाता है, बुड़बुड़ जितना हो सके उतना ऐसा पानी डालना चाहिए ताकि उसके अंदर बुड़बुड़ आए, लेकिन गंगा का पानी में अगर बुड़बुड़ आता है तो क्या है अपवित्र माना जा सकता है, उसको नहीं माना जा सकता है। तो वैसे ही अगर वैष्णव ने शुद्ध भक्ति का मार्ग स्वीकार किया है तो उसके अंदर कोई प्रकृति की वजह से कोई किसी का स्वभाव रहता है कोई गुस्सा हो जाना, किसी का ऐसा स्वभाव रहता है कोई कुछ ज्यादा खाने का स्वभाव रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा सा कुछ ना कुछ प्रकृति के तीन गुण से वजह से कुछ ना कुछ दोष आता है, सो प्रकृति में तो दोष है, तीन गुण मतलब दोष है, इसके अंदर कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, देयर इज नथिंग गुड और बैड विद इन द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये भौतिक संसार में जब तक व्यक्ति सोचने लगता है कि ये सही है गलत है ये अच्छा है बुरा है ये सुंदर है ये खराब है, तब तक वो व्यक्ति अस्तित्व द्वंद में फंसा हुआ है। चेतन चेतन का मनोधर्म, इट इज ऑल मेंटल स्पेक्युलेशन। मेंटल स्पेक्युलेशन मतलब क्या है, टू सी समथिंग गुड समथिंग बैड विद इन द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये भौतिक गुणों के अंतर्गत ये सही है, गलत है, सुंदर है, खराब है, ये देखना ये जो है ये मनोधर्म मेंटल स्पेकुलेशन। तो ये लोग भी सोचने लगे, ये देखो इधर बैठा है ना, इधर ऊंचे आसन पे ऊपर, ये जड़ भरत, ये एकदम बराबर है, हमारे लिए फिट है। तो क्यों? क्योंकि इनको बाहरी दृष्टिकोण से देख रहे, they were seeing him from the external point of view। इसने हमको ये तीन गुणों से युक्त शरीर को अंदर दोषों को देखना नहीं चाहिए, we should not see। इनके अंदर दोषों को देखेंगे वही हमारा पतन का कारण होगा, immediately will be destroyed। तो ये एक बात हमको आज सीखने को मिला। उसके बाद जड़ भरत की परिस्थिति हम देखते हैं। एक तो ये लोगों ने जड़ भरत देखा, जड़ भरत को देख के तुरंत सोचा कि ये फिट आदमी है, अभी हमको सैक्रिफाइस करने के लिए वो गए, जाके उनको रस्सियों से उनको बांधा, बांधे तो देखे, देखने लगे ये तो एकदम बिल्कुल कुछ बचाने के लिए प्रयास ही नहीं कर रहा है। तो सोचा बहुत आसान हो गया हमारा काम, तो उनको बांध के लेके अभी आए। तब उस समय प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि ये जड़ भरत उनके पास इतना बल था, जैसे पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है कि बहुत बल था, बहुत शक्तिशाली थे। असित में ये बल को देख के ही राजा रघुवर ने सोचा हाँ ये योग्य व्यक्ति, इसको लेके आओ, इसको हम लोग अपनी पालकी उठाने के लिए रखेंगे। तो राजा रघुवर ने उनको ये बल देख के रखा था, तो इतना बलवान व्यक्ति चाहे तो रस्सी को तोड़ के बाहर निकल सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं किया। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं, बोलते हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तो अधिकार। मारो भी राखो भी, मारो भी राखो भी मतलब आप मुझे मारो या मुझे रखो, जो इच्छा तुम्हार, जो आपका इच्छा हो, भगवान की प्रार्थना कर रहे हो। नित्य दास प्रति, मैं आपका नित्य दास हूं, तू अधिकार, क्योंकि मैं आपका दास हूं तो मेरा जीवन के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए मैं अपना जीवन को बचाने के लिए मैं क्यों प्रयास करूं? अगर आप बचाना चाहते हो मुझे बचाओ, अगर आप मुझे मारना चाहते हो मुझे मारो, क्योंकि मैं एक बिका हुआ व्यक्ति हूं, आई एम ए स्लेव। एक अंग्रेजी में एक शब्द है वो है स्लेव। स्लेव मतलब संपूर्ण रूप में बस अभी जो मालिक बोलता वो करेगा ही। और अंग्रेजी में और एक शब्द है वो है सर्वेंट। सर्वेंट मतलब सेवक, सेवा करने वाला। तो एक जगह हम इसके ऊपर भी चर्चा कर रहे थे, ये शब्द जो है दासा, दास मतलब क्या है, हम सेवक बोलते हैं, लेकिन अस्तित्व में ये अंग्रेजी में ये दो शब्द है, एक है स्लेव दूसरा है सर्वेंट। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तब ये दास करके शब्द होता है। इसके लिए थोड़ा सा गहराई है। स्लेव मतलब क्या है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार, अस्तित्व तैयार नहीं, कुछ भी करता है, वो मालिक जैसा बोलता है उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका और कोई चारा नहीं, क्योंकि बिक गया हो, कंप्लीटली बिक गया। लेकिन उस स्लेव के अंदर भावना रहता है, क्या भावना रहता है कि जबरदस्ती करने का भावना रहता है। वो जबरदस्ती करने की भावना निकाल कर रख दो जो स्लेव करता है, क्योंकि वो बिक गया कंप्लीटली और कोई रास्ता नहीं है, ये भावना को स्वीकार करो। और सर्वेंट यानी जो सेवक है उसके अंदर क्या भावना रहता है, उसके अंदर भावना रहता है कि मैं करूंगा, उनके अंदर ऐसा जबरदस्ती की भावना नहीं रहता है, लेकिन क्या भावना रहता है, नहीं मैं यही काम करेगा, तो यही काम करूंगा, नहीं मैं अपना भी इंडिपेंडेंस है अभी भी, उधर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता गया नहीं, तो स्वतंत्रता को निकाल दो। यानी जो सर्वेंट के अंदर जो भावना है स्वेच्छा से करने का, और दूसरा स्लेव में क्या रहता है, स्लेव मतलब उनके अंदर क्या भावना रहता है, वो जो बोलेगा वो करना है, विलिंग टू डू एनीथिंग। तो ये दोनों भावना जोड़ेंगे उसको बोलते हैं दास। प्रभुपाद बोलते थे कि ब्रह्मचारी इज अ सोल्ड आउट लाइक अ सोल्ड आउट डॉग। सोल्ड आउट डॉग मतलब अगर कोई बिका हुआ कुत्ता है तो उनका और कोई चारा नहीं है। तो भक्तिनाथ ठाकुर इस प्रकार बोलते हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। मैं आपका नित्य दास हूं। दास मतलब क्या है, आप जो करेंगे, क्योंकि मुझे और कोई चारा नहीं है, देयर इज नो अदर होप फॉर मी, और मैं आप जो बोलेंगे वो स्वेच्छा पूर्वक अच्छी तरह से मैं करने के लिए तैयार। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ ए डिवोटी। इस प्रकार अगर कोई अपना जीवन व्यापन करता है उनको जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं है, सारा जितने भी भक्तों के जीवन में इस प्रकार की मानसिक टेंशन वगैरह या कुछ और दुख या डिफिकल्टी क्यों आता है, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझे, इस बात को मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारा जो करना है करो, अभी मेरा क्या है आपका काम करना है, बस वही जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार, बिकॉज आई एम कंप्लीटली सोल्ड आउट, कंप्लीटली सरेंडर। तो जो व्यक्ति इस प्रकार शरणागति भावना से रहता है तो उसके लिए अपने जीवन में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, मृत्यु भी अगर सामने आ जाए उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इज कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णा विल कंप्लीटली टेक केयर ऑफ इट। तो ये जड़ भरत के अंदर जो ये जो हमको इस श्लोक के द्वारा इस अपने कार्यक्रम में मुझे शिक्षा दे रहे, हमको अपने जीवन में अपने जीवन में निर्वाहन करना चाहिए। तो इस जगह भक्ति रसामृत सिंधु का जो मूलभूत श्लोक है उसको हम स्मरण कर सकते हैं, वो क्या है, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। इसके अंदर सबसे पहला लाइन क्या है, अन्याभिलाषता शून्यम, अन्य अभिलाषा इता शून्यम, कोई और अभिलाषा नहीं। क्या अभिलाषा है, एक ही अभिलाषा है और भगवान को प्रसन्न करना, इतना तक भी अभिलाषा नहीं, मुझे वो चाहिए ये चाहिए, कोई किसी प्रकार का अभिलाषा नहीं। लेकिन इधर आचार्य कहते हैं कि इधर एक और एक शब्द इस्तेमाल किया गया, उसका नाम क्या है और उसका वो शब्द क्या है, वो गीता, अन्य अभिलाषिता प्लस गीता, अभिलाषा प्लस गीता अभिलाषिता होता है। ये गीता शब्द क्या सूचित करता है, बोलते है कि ये सारे प्रकार की अभिलाषा को त्याग कर दिया भक्त ने, लेकिन कुछ प्रकार की अभिलाषा जरूर रखता है, वो क्या है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। मान लीजिए कोई एक भक्त जब करते हुए जंगल में जा रहा है, शुद्ध भक्त है, अचानक से एक शेर आ गया उसके ऊपर कूद पड़ा, तो भक्त क्या बोलेगा, ओ भगवान बचाओ। मान लो कि ऐसा बोल दिया भगवान बचाओ, क्या वो शुद्ध भक्त के सर से नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, हाँ कि ना, बोली
नहीं
नहीं, हाँ। तो ये जो बात है सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब अपनी ये जो शरीर आत्मा को रखने की जो मिनिमम जो चीजें हैं उनके लिए, अगर भले भक्त थोड़ा सा इस प्रकार का इच्छा भी प्रकट कर दे, वो शुद्ध भक्ति से अलग नहीं है करके रघु गोस्वामी पाद इस बात को बताते हैं। जैसे कोई एक शुद्ध भक्त है, उनके सामने प्रसाद परोस रहा, बोलेंगे प्रभु जी आप रसगुल्ला चाहिए गुलाब जामुन चाहिए, ठीक है जो भी दे दो, ठीक है रसगुल्ला दे दो, तो बोलेंगे नहीं ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्यों इसको रसगुल्ला नहीं, ये भी ऐसा कर रहे से कोई शुद्ध भक्त की सर से वो नीचे नहीं गिरता, क्यों, ये कौन से शब्द से बात मालूम पड़ रहा है कि अन्याभिलाषता शून्यम श्लोक में इता जो शब्द है उससे ये बात हमको मालूम पड़ता है। इसलिए हमको शास्त्रों को अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, ये शुद्ध भक्ति होता क्या है, ये कब हम पद से डाइवर्ट हो रहे, कौन किस प्रकार किस प्रकार शुद्ध भक्त को पहचाना जाए, तो ये सब चीजें शास्त्र में अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, इसलिए हमको ये सब पढ़ना चाहिए, ठीक है। इधर जड़ भरत वो इता को भी त्याग कर दिया, अन्य अभिलाषिता इता जो है उसको भी त्याग कर दिया। अगर कोई व्यक्ति आके बांध रहे हो जड़ भरत तो एकदम पूर्ण कृष्ण भावना भाव में मग्न है, भले वो रात को जंगल में बैठे है संरक्षण करने के लिए, सुअर को भगाने के लिए, उन सबको भगाने के लिए, लेकिन अस्तित्व उनका जो चित्त था हमेशा कृष्ण का मनन करते हुए लगा हुआ था, तो उस समय ये रस्सी लेके उनको बांध के जब लेके जा रहे थे वो कम से कम ये भी बोले नहीं कि हे भगवान मुझे बचाओ। अमरीश महाराज के घटना में हम देखते हैं कि जब दुर्वास मुनि बहुत क्रोधित हो गया तो उन्होंने क्या किया, अपना वाल से निकाल के एक असुर को उत्पन्न किया, एक राक्षस को, एक भूत को उत्पन्न किया, वो भूत जो है अमरीश महाराज के ऊपर प्रहार करने के लिए, तो भाई अमरीश महाराज एकदम कृष्ण की ध्यान करते हुए बैठे थे, उन्होंने ये भी नहीं पूछा ओ भगवान मुझे बचाइए। तो ये जो उदाहरणों के द्वारा भागवत में हमको क्या शिक्षा दे रहे भगवान और सारे भक्तों, यही शिक्षा दे रहे कि डोंट वरी बी हैप्पी, मा सुचा, मा सुचा मतलब डोंट वरी, भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य वामेकम शरणोज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सारे प्रकार की जो पापों से मैं मुक्त करा दूंगा उससे कोई डरने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू वरी, कोई किसी चीज से डरना नहीं। जैसे हम प्रहलाद के प्रसंग में बता रहे थे, लक्ष्मी जी तक डर गए नरसिंह देव को देख के, सारे देवता लोग सब लोग डर गए लेकिन प्रहलाद उनसे डरे। क्यों नहीं डरे? क्योंकि वो पूर्ण तरीके से वो भगवान का शरणागत है। उसका वर्णन करते हुए हमने क्या उदाहरण दिया था, एक मछली का उदाहरण दिया था। इतना भयानक सा समुद्र में वो मछली जो है आराम से तैरता है, समुद्र को देखते ही बड़ा बड़ा जाल भी डूब जाता है, बड़े बड़े लोग भी उनको देख के डर जाते हैं, बड़े बड़े हाथी को भी वो नदी का जो पानी है वो भाग के लेके जाता है। लेकिन उसी जलाशय में रहने वाला जो मछली है वो आराम से नदी में घूमता है, तैरता है, उसको कोई आनंद से रहता है। क्यों क्यों रह पाता है? क्योंकि वो जलाशय का जो शरणागत हुआ है। इसलिए सरेंडर टू कृष्णा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भगवान का शरणागत होना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है सारे भक्तों का। ये बात बार बार हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो शरणागत है, लेकिन कितना शरणागत है हमको रोज ये जांच करके रखना चाहिए। वी हैव टू एक्सपेरिमेंट हाउ मच वी आर सरेंडर टू कृष्णा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि as you have learned from the previous verses, he simply depended on the supreme personality of Godhead for his protection. संपूर्ण रूप से अपनी संरक्षण के लिए उन्होंने क्या किया, भगवान के ऊपर वो निर्भर हुआ। तो in this context, Srila Bhaktivinoda Thakur described the surrender on the supreme Lord in this way. Bhaktivinoda Thakur अपने शरणागति के गीत में इस प्रकार वर्णन करते, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार, यू कैन प्रोटेक्ट मी इन एनी केस, आई एम फुल्ली सरेंडर्ड ऑन यू, मैं संपूर्ण रूप से आपका शरणागत हूँ, आप मुझे संरक्षण करो। ये भावना हमेशा आप बना के रखना चाहिए। भगवान भगवीता बताते हैं कि जो व्यक्ति यदा दे मोह कैलम बुद्धि विदितरिष्यसि तथा दंता निर्वेदम श्रोतव्य स्तयस्य च श्रोतव्य सुचय, जो भी उन्होंने पहले सुना है, जो सुनने वाला हर चीज से बिकम्स कंप्लीटली इनडिफरेंट, यानी भौतिक चीजों की जो भी हो रहा है इस संसार में इसके प्रति जरा ध्यान ही नहीं देता है। कोई व्यक्ति आपके सामने रोए, कोई व्यक्ति आपके सामने हंसे, ये दोनों चीजें एक ही जैसा लगता है रुकता हुआ। तो एक व्यक्ति इधर सब लोग खुश हो रहे थे उनको जड़ भरत को देख के, होने के बाद जड़ भरत उनको देख के हंसे थे, मन ही मन में सोच रहे कि क्या हो रहा है, ठीक है जो करना है करने दो, बिकॉज ही न्यू दे आर ऑल इग्नोरेंट, जो अज्ञान में है उनके दो उनको देख के हमको जरा से विचलित नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ समबडी एल्सस प्रॉब्लम हमको क्यों परेशान होना है? प्रॉब्लम किसका है? उसका है। मान लो कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है आपके प्रति, वो गलत व्यवहार क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अज्ञान में है। उसका अज्ञान की वजह से आप क्यों दुखी हो जाए? Why you should suffer for somebody else's ignorance? बहुत महत्वपूर्ण और गहरा शिक्षा इससे मिलता है। अभी ये सब डाकू लोग सब अज्ञान में है, अभी जड़ भरत कौन है? वो पूर्ण तरीके से मुक्त आत्मा, वो ज्ञान है। तभी ये डाकू लोग आकर उनको बंधन करके उनको मारने के लिए लेके जा रहे हैं। वो क्यों लेके जा रहे हैं उनको मारने के लिए? क्योंकि वो लोग अज्ञान में है। तो दूसरों का अज्ञान की वजह से वो लोग हमको कभी दुख पहुंचा सकते हैं। अगर उसके वजह से अगर कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है, ये हमारा गलती है। दूसरों का अज्ञान की वजह से हमको परेशान नहीं होने की जरूरत। वी डोंट हैव टू बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ समबडी एल्सस इग्नोरेंस। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार हमको दुख देने के लिए, पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए कोई आता है, एक मुक्त पुरुष को क्या सोचना चाहिए? ज्ञानी व्यक्ति को ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अज्ञान में। अगर वो अज्ञान में है तो प्रॉब्लम किसका है? उसका प्रॉब्लम है, मुझे क्यों परेशान होना है? ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसे इस बात को हमारे जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? हमेशा कुछ लोग आगे होता है, तो इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम, मुझे ये मुझे परेशान कर रहा है। और वो परेशान कर रहा है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो परेशान कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बातों को हमको मनन करना चाहिए। जैसे मनन करेंगे हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम हमेशा दृढ़ रहेंगे। ये दृढ़ता ये मनन करने से ही आता है, नहीं तो नहीं आता है। यू विल नॉट गेट दिस दृढ़ता डिटर्मिनेशन जो है, ये संकल्प जो है, दृढ़ संकल्प, ये सब बातों के ऊपर मनन करने से आता है। भले ही बाहरी रूप में हमको प्रैक्टिकल होना है, ये होना है, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं लोग, लेकिन फिर भी अंदरूनी जो भावना है, ये जड़ भर की भावना, लोग बोलते हैं वो हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए, कुछ दिन पहले बताया गया। लेकिन ये जड़ भर की के अंदर जो अंदरूनी जो भावना है, उसको हमारे हृदय में बढ़ाने में और प्रोत्साहन करने में, उनको अपने अंदर हृदय में उतारने में उतारने में संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हर व्यक्ति को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। भले ही कुछ प्रचार के लिए हो, क्योंकि हम शहर में रहते हैं तो कुछ प्रैक्टिकली कुछ व्यवहार करने में कुछ नाटक जैसा ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली एवरीबॉडी शुड बिकम जड़ भरत। ऐसा बोला गया है कि आप जड़ भरत का अनुकरण नहीं करना चाहिएगा, ये सुनने के लिए कई पुस्तकों को पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं, लेकिन फिर भी ये जड़ भरत की जो स्थिति है, हर व्यक्ति को अपने हृदय में कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मैं अंदर ही अंदर जड़ भरत बनूं, वो धारण करना चाहिए। और बाहर के दृष्टिकोण से थोड़ा सा, क्योंकि शहर में रहते हो आप गंदे कपड़े पहन के नहीं जा सकते हो। असल में अगर वही व्यक्ति ऐसा हुआ कि आपको 10 दिन जंगल में रहना है, तो हम भी जड़ भरत जैसे कोई पटा कपड़ा पहनेंगे, थोड़ा मिल गया थोड़ा सा जो मिला उसे रह जाएंगे। क्योंकि शहर में है प्रचार के वास्ते, इसलिए हम थोड़ा सा नाटक करते, ड्रामा करते, हम अच्छे है, सब भी है, क्लीन है, वो है। We just want to show to the people, नहीं हम भी बहुत अच्छे लोग हैं, आप भी आइए और हमारे अंदर अच्छाई सीखिए। हमारे अंदर अच्छाई क्या है? एक ही अच्छाई है, थोड़ा सा कृष्ण भक्ति है, वो एक ही अच्छाई है। ये बाकी सब जितने ये भौतिक संसार से संबंधित, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा व्यवहार करना, एटिकेट है, वो है, ये सब चीजें, ये रियल अच्छाई नहीं है। रियल गुड थिंग इज ओनली वन थिंग, कृष्ण कॉन्शियसनेस। जड़ भरत को या जड़ भरत के सारे गुण को अपने हृदय में अंदर ही अंदर उसको बढ़ाना चाहिए, देन वी कैन हैप्पी स्पिरिचुअल लाइफ। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, हर एक छोटा सा चीज के ऊपर डिस्टर्बेंस आ जाएगा अपने जीवन में। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी, कोई प्रश्न?
शास्त्र में बताया गया है क्या मनुष्य को बलि दिया जाता है?
हाँ, शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को इस प्रकार का, मनुष्य अलग अलग प्रकार के जो बलि के बारे में बताया गया है। लेकिन ये जो है ये कुछ विशेष प्रकार के लोगों को विशेष प्रकार के कार्य को सिद्ध करने के लिए वो सब विधि विधान बताया। खास करके इधर जो प्रसंग है तात्पर्य में जगह का है, ये डाकू जो है वो काली का अपनी मनमानी पूजा कर रहा है। ऐसा कुछ तो पहले आता है, he was doing mental speculation, पूजा में।
Next.
आगे में आता है, कहीं पहले आता है, तो he was doing मनमानी पूजा मंत्र बोल रहा था, लेकिन शास्त्र में है, लेकिन वो जो कर रहा था वो सोच रहा था कि शास्त्र में इस प्रकार, लेकिन उस प्रकार नहीं था। इट इज देयर, लेकिन कलयुग में वो सब वर्जित है। अश्वमेधम गवालंबम देवरेणस्तोत्पत्ति संन्यासम, ये सब जो कलयुग में विवर्जित है, पहले के युगों में ये वर्णन था। तो देखिए पहले के युगों में ऐसे इस प्रकार के ब्राह्मण थे, अगर गो को वध कर देते गाय को तो तुरंत उनको मनुष्य जन्म देते थे या उसको फिर से जीवित कर देते थे। तो इस प्रकार का ब्राह्मण में शक्ति तभी कहाँ है? नहीं है। इनका प्रश्न है कि कांस्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस एंड सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड आर दे टू डिफरेंट थिंग्स। यानी इनका प्रश्न यह है कि 24 घंटा भगवान की सेवा में रहना, पद में रहना और संपूर्ण रूप में भगवान की शरणागत होना, ये दोनों क्या अलग अलग है? वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है, एक बहिरंगिक है दूसरा है अंतरंगिक। शरणागति जो है वो अंतरंगिक भावना है, जब वो बाहर प्रकट होता है वो भगवान की सेवा के रूप में व्यक्त होता है। इफ यू आर सरेंडर टू कृष्णा देन यू विल सर्व हिम, लाइक ए स्लेव इज सरेंडर टू द मास्टर देन ही विल सर्व द मास्टर। एक है सूक्ष्म है ये शरणागति, दूसरा क्या है बहिरंगिक रूप में सेवा। कभी कभी बहिरंगिक रूप में कोई भी सेवा कर रहा है लेकिन वो भगवान का शरणागत नहीं है या शरणागति भावना को प्रोत्साहन नहीं कर रहा, तो क्या होगा, थोड़ा सा तकलीफ आता है सेवा में छोड़ देगा, ध्यान नहीं करेगा। थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा परेशानी आता है, थोड़ा सा कोई व्यक्ति आपके पास बराबर व्यवहार नहीं करता है, नहीं हम नहीं करेगा, हम नहीं आएगा। क्यों? शरणागति की भावना नहीं है। अगर शरणागति की भावना है चाहे कुछ भी आ जाए, बीमार हो भी राख हो भी, मैं अपना जो सेवा करने का जो कर्तव्य है वो ध्यान नहीं करूंगा। इसलिए भावना बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इंटरनल मूड और सरेंडर टू कृष्णा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो रहेगा तो सेवा जरूर करेगा व्यक्ति, जहां प्रेम है, प्रेम है तो सेवा जरूर करेगा। वैसे थोड़ा सा ठीक है दिखाने के लिए, थोड़ा सा सेवा करने के लिए आया, थोड़ा तकलीफ आएगा, अगर प्रेम नहीं तो क्या होगा, वो समझे। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कंप्लीट बीइंग सरेंडर टू कृष्णा, और सरेंडर मतलब यू विल सर्व, यू हैव टू डेवलप दिस चरण। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ये गीत लिखे, नहीं तो लिखते हैं ठीक है अब ये करो ये करो, बहुत सारे लिस्ट आइटम दे देते हैं ये करने की लिस्ट। गीत क्यों लिखे, शरणागति का गीत क्यों लिखे, वाय? ताकि ये गीत को पढ़ते पढ़ते वो भावना हमारे अंदर जागृत हो सके, यू कैन डेवलप द मूड ऑफ सरेंडर टू कृष्णा, कंप्लीट सरेंडर टू कृष्णा। इनका प्रश्न यह है कि मैंने कहा था दूसरा व्यक्ति आपको परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अज्ञान में है, तो वो अज्ञान में है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। मैं जब ये बताया कि आपको परेशान नहीं होना है, मतलब क्या है, उसका जो द्वारा उसके द्वारा जो परेशानी जो क्रिएट किया गया उससे परेशान नहीं होना, आपको परेशान होना जरूरी है किसके लिए, अरे वो अज्ञानी है वो जानता नहीं है भी, मुझे इसको सहते हुए उसको कुछ उद्धार का एक मार्ग बताना है। जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आपको शरणागत नहीं है, अगर वो शरणागत नहीं है तो आप डायरेक्टली उनको इंस्ट्रक्ट नहीं दे सकते, इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, थोड़ा महाप्रसाद दे सकते हो, थोड़ा सा कुछ चरणामृत दे सकते हो, हरे कृष्ण बोल सकते हो, उतना ही कर सकते हो। You can only instruct when the somebody is surrendered to you. Only surrendered to you. तो अगर आप उसके द्वारा सृष्टि किया जितना ही परेशानी उसको झेलते हुए शांति से रहेंगे और हमेशा उनको उद्धार करने की भावना से रहेंगे तो क्या होगा, उनके आपके अंदर ये जो नम्रता की जो गुण है, उनके अंदर जो वैष्णव का गुण है उसको देख के वो स्वाभाविक तरीके से वो सरेंडर हो जाएंगे। जैसे जगह बजाय इतिहास जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए, नित्यानंद ने क्या बोला, नहीं नहीं आप तो मत कीजिएगा, सोचने लगे अरे मैं तो उनको मारा खून निकल रहा है लेकिन फिर भी मेरे लिए वो भीख मांग रहा है, तो तब उनका पूरा जो है चेंज हो गया। दैट इज एक्चुअली प्रीचिंग, दैट इज प्रीचिंग। यही सूक्ष्म बातें हैं, हम अपने दिनचर्या के कार्यकलापों में सब को थोड़ा सा भूल जाते हैं, मैकेनिकल होते हो, लेकिन नहीं होना चाहिए, ऑलवेज कॉन्टेम्प्लेट ऑन ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली वी कैन बिकम डिवोटेड, व्हेन यू प्रैक्टिस डिवोशन देन यू बिकम डिवोटेड। भक्त कब बनेंगे, भक्ति को करेंगे तब भक्त बनेंगे, और भक्ति क्या है, यही बात है, दिस इज कॉल्ड डिवोशन। उनको चेंज क्यों नहीं किया? इनका प्रश्न है कि जड़ भरत परमहंस थे तो अपने प्रभाव से इन लोगों को चेंज क्यों नहीं किया, इनका परिवर्तन क्यों नहीं किया? ये देखना चाहिए जड़ भरत उस समय उनका कुछ एक विशेष प्रकार का सेवा भगवान के प्रति, इज नॉट इन टू दैट मूड ऑफ परिव्राज आचार्य, वो आचार्य के रूप में वो व्यवहार नहीं कर रहे थे। अगर मान लीजिए उसी समय कोई प्रभुपाद जी होते, अगर वो मंदिर में है प्रभुपाद जी जप कर रहे, उस समय कोई व्यक्ति आके प्रभुपाद जी को क्या कह रहा, खुद को क्या कह रहा, थोड़ा सा मंदिर का एक कोने में पड़ा हुआ एक पत्थर को भी चोरी करके लेके जाते तो प्रभुपाद जी का नहीं नाम सबको बुलाते थे, देखो कोई चोर आया भगाओ पकड़ो उसको। प्रभुपाद जी भी मुंबई में थे उस टाइम में, सब लोग रात को एकदम चिल्ला के सबको उठा दिए, क्योंकि एक चोर आके नारियल चोरी कर रहा था, नारियल का पत्ता तोड़ के जा रहा था। तो प्रभुपाद जी एकदम हो गए, क्योंकि उस समय वो क्या किस प्रकार थे, किस प्रकार के कार्य कर रहे थे, प्रभुपाद जी का सेवा रहता क्या, वो आचार्य के रूप में और भगवान का प्रॉपर्टी का संरक्षक के रूप में, एक मठाधीश के रूप में भगवान का एक सेवा था। सो फॉर दैट ही वाज गोइंग टू डू, ही वाज डूइंग दैट रोल, प्लेइंग द रोल ऑफ आचार्य। जड़ भरत एक आचार्य के रूप में व्यवहार नहीं करते, अपना जो मुक्त पुरुष होता क्या है, उनको भौतिक संसार में किस प्रकार उनका व्यवहार होता है, ये सारा जगत को दिखाते हैं। कृष्णा इज वांटिंग हिम टू प्ले दैट रोल सारे संसार को सिखाने के लिए। भगवान की योजना से तो ये सब हुआ ना, भरत महाराज थे, भगवान की योजना से वो हिरण के प्रति ये सब हुआ, तो भरत महाराज ऐसे थोड़ी ना हिरण के प्रति आसक्त हो जाएंगे, नो इट इज कृष्णा इंटेंशन। हाव के स्तर में पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति इस प्रकार होता है, लेकिन फिर भी भागवतों में उनको उदाहरण इसलिए दिया गया, किसके लिए दिया गया, भागवतों में हमेशा एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया जाता है एक बात को विशेष तरीके से उल्लेखित करने के लिए। सो फॉर शोइंग स्पेशल, फॉर टीचिंग ए स्पेशल थिंग, एक विशेष चीज को सिखाने के लिए भगवान अपने अलग अलग भक्तों को एक विशेष परिस्थिति में डालते हैं, विशेष दिखाते हैं। बाद में जब रघुवंश का समय आया तब वो शिक्षक के रूप में अपना रूप धारण किया भगवान को, ये रघुवंश का संवाद कितना 3-4 चैप्टर में है, 4 चैप्टर रघुवंश का संवाद, राजा रघुवंश और जड़ भरत का 4 अध्याय, उधर उधर आत्मा तत्व का जो ज्ञान है वो पढ़ेंगे तो एक एक दिग्भ्रमित होने वाली चीज है, कैसे उनका जड़ भरत का भी जीवनी पढ़ेंगे, वो गंदा रहते थे, कोई फटा कपड़ा पहनते थे और उधर जाते थे और सड़ा हुआ चावल खाते थे, ऐसा व्यक्ति को बहिरंग दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो लोग सोचेगा रे मूर्ख है। तो इस बात को कभी कभी आचार्य अपने जीवन में स्वीकार भी किए। बंसीवंश ठाकुर ने क्या किया, पढ़ाई करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो क्या हो गया, सोचने लगे मैं पढ़ाई करूंगा मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो लोग सोचेगा एक बहुत योग्य व्यक्ति है, अगर योग्य व्यक्ति है तो सबसे पहला क्या है, अभी लड़का लायक बन गया उसको शादी कर लूंगा, तब बर्बाद हो गया। संसार में मैं लायक हूं करके जैसे व्यक्ति सोचता है उसी समय वो बर्बाद हो गया। ये भौतिक योग्यता ही हमारी आध्यात्मिक अयोग्यता का कारण है। मेटीरियल क्वालिफिकेशन इज अ स्पिरिचुअल डिस्क्वालिफिकेशन। जैसे कुंती महारानी क्या बोलती है, जन्मैश्वर्य शतत श्रीवीर यदमान मदक कुमार नैवादी तविदात्मो एक पाव किंचन गोचर। ये जो 4 चीजें, जन्म, मैं ब्राह्मण परिवार में, हमारे वही तो प्रॉब्लम है, अगर ब्राह्मण नहीं होता तो आराम से नम्रता से ज्यादा मंदिर, ब्राह्मण है तभी प्रॉब्लम है, ब्राह्मण होता मैं सीधा डेटी में जाके मैं करेगा सब लोग मुझे आदर करे, इस प्रकार की भावना अहंकार आता है। ऐश्वर्य, मैं धन देगा तभी मंदिर बनेगा, ऐसे थोड़ी ना मंदिर बनेगा, तो उसके अंदर उसको अहंकार आता है। ये भौतिक योग्यता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये 4 चीजें क्या है, बड़ा भाग्य से मिलता है, जितना भाग्य होगा उस व्यक्ति को धनी होता है, लेकिन असल में कुंती महारानी बोलते हैं कि बड़ा दौर्भाग्य से सब मिलता है, बिकॉज ऑफ ग्रेट, बिकॉज ऑफ अनफॉर्चून, ग्रेट मिसफॉर्चून यू गेट दिस फोर्थ। दौर्भाग्य से कोई व्यक्ति धनी बनता है, दौर्भाग्य से ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, खास करके कलयुग में, कलयुग में जो ब्राह्मण परिवार में जन्म ले कौन लेता है, जो पिछले युगों में भगवान डायनासोर को वध नहीं किए थे वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, और कोई व्यक्ति मैं ब्राह्मण हूँ, कौन सा डायनासोर है उसको, सबसे बड़ा असुर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए वही असुर। अब देखो पूरा हिस्ट्री खोल के देखो इतिहास में, हमारा देश का इस बर्बादी का कारण ही यही है, द रीजन इज द ब्राह्मण्स। हर जगह का, हर जो राजा का, जो छोटे छोटे राजा थे अंग्रेज आने से पहले, उन सबका पतन क्यों हुआ, उसके पीछे एक ब्राह्मण का कार्य, ब्राह्मण का ये मेरे देखो, हर हर राजा का इतिहास देखो, उनका पतन क्यों हुआ, उधर का राज, उधर का जो एक ब्राह्मण है उन्होंने इस प्रकार किया। तो बड़ा दौर्भाग्य से कोई धनी बनता है, बड़ा दौर्भाग्य से कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, बहुत सौभाग्य, बहुत पढ़ा लिखा है, यही तो प्रॉब्लम है। कोई आपके शुरुआत में जो हम ज्वाइन किए थे 6-7 साल में, एक प्रभु जी आके आपको बताए, प्रभु जी आपको सौभाग्य है कि आपने तो अच्छा पढ़ाई किया तब आप ज्वाइन किए, कोई अच्छी बात है, तो बोला ज्वाइन किया वो अच्छी बात है लेकिन पढ़ा लिखा वो अच्छी बात है, क्योंकि आप नहीं पढ़े तो कितना दौर्भाग्य, कितना खतरनाक स्थिति आपको नहीं मालूम, जो गया है। प्रभुपाद जी अगर ये नहीं बोलते कि सब चीजें स्कूल कॉलेज क्या है, जब स्लॉटर हाउसेस, स्लॉटर हाउस मतलब कत्ल खाना, जब आचार्य बोलते इस बात को, इसके अंदर 100% सत्य है, इट इज 100% ट्रूथ, इट इज स्लॉटर हाउस। प्रभुपाद जी जो किताब अच्छी तरीके से जो पढ़ा है वही इस बात को समझ सकते हैं, वो कितना बड़ा स्लॉटर हाउस है, कितना बड़ा कत्ल खाना है, वो बात अहंकार उत्पन्न होता है, सो बेटर नॉट टू हैव दिस थिंग्स। अगर कोई बड़ा दौर्भाग्य से, अगर कोई धनी है दौर्भाग्य से, कोई पढ़ा लिखा है तो क्या करना है, तो उनको कृष्ण की सेवा में लगा के वो शुद्ध हो जाए। By great misfortune, if you become educated, use that education in Krishna service, by this the education gets purified. अगर कोई बड़ा दौर्भाग्य से वो कोई धनी बन जाता है तो वो धन को कृष्ण की सेवा में लगा के वो शुद्ध कर। तो ये सब जितने भौतिक ऐश्वर्य है, धन संपत्ति या पढ़ाई लिखाई या बड़ा परिवार में जन्म लेना, ये सब अज्ञान है। जब उस अज्ञान को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तब वो शुद्ध होता है, मैटर बिकम्स प्यूरिफाइड। सो जब जड़ भरत के पास कोई मेटीरियल क्वालिफिकेशन स्थाई नहीं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, जब है पर और कुछ मेटीरियल्स इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट है बड़ा दौर्भाग्य से वो बुद्धिमान है, लेकिन बड़ा सौभाग्य से उस बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा रहे। अगर वो नहीं लगाते देखिए क्या हालत होता होगा। One becomes a great devotee by humility. This is the only test. Great devotee, महान भक्त मतलब क्या है? महान भक्त मतलब वो कितना नम्र है। कितना ज़्यादा नम्र है, उतना महान भक्त है। अगर नम्र बनने के लिए क्या सोचना पड़ेगा? ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरे सारे जितने भौतिक योग्यता है, being expert, expertise in dealing with matter. Is ignorance. हिंदी में क्या बोलते
हैं?
निपुणता। भौतिक जगत में कार्यकलाप करने की जो निपुणता है ये अज्ञान है, जो व्यक्ति सोचता है या समझ लेता है तभी तो नम्रता आएगा, नहीं तो मैं बहुत एक्सपर्ट मैनेजर है, यही प्रॉब्लम है। एक्सपर्ट है तो सब लोग आके बोलेंगे फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा प्रमोशन दिया, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं बोलता, यूजलेस बोलता था, वो सच में समझ लेता ये मैं नालायक हूँ, मैं नालायक हूँ करके कोई भी सोचता है तो भगवान प्रसन्न होते। कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड, मोसम पतिता परु ना पाए विरार। तो टू बी टू थिंक आई एम डिसक्वालिफाइड इज अ क्वालिफिकेशन टू अटेन मर्सी ऑफ कृष्ण। मैं पूर्ण तरीके से अयोग्य हूं करके सोचना ये योग्यता है भगवान की कृपा प्राप्त करने। हरे कृष्ण भागवत।